प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं मुरारीलाल शर्मा ई लर्निंग द्वारा अध्यापन के लिए आज एक और पाठ लिए उपस्थित हूं। आज हम नवीं कक्षा की हिंदी पाठ पुस्तक क्षितिज भाग एक के पांचवें पाठ नाना साहू की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया को पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका चपला देवी हैं। तो पहले लेखिका के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालता हूं। बच्चों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ऐतिहासिक या विशिष्ट कार्य करते हुए भी इतिहास और समाज में गुमनाम रह जाते हैं। ऐसे ही लेखन कार्य में होता है। ऐसे बहुत से कवि, लेखक, समाज सुधारक और देशभक्त हैं जो प्रसिद्धि से वंचित रह गई, कोई विशिष्ट पहचान नहीं बना सके। चपला देवी भी अपने समय की ऐसी ही गुमनाम लेखिका हैं। ये द्विवेदी युग की रचनाकार हैं। चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में सीधे शब्दों में कहें तो उनके जीवन परिचय के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आजादी के आंदोलन में गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे रिपोर्टाज शैली का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। चपला देवी की भाषा संस्कृत शब्दों से संपन्न है, साथ ही उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव एवं सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। इस रचना में हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप मिलता है। इस रचना में स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब धुंधू पंत की पुत्री मैना के बलिदान की कहानी है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधू पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आजादी की नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। इस पाठ को आसानी से समझने के लिए हम इसे कहानी के रूप में पढ़ेंगे। पूरे पाठ की विषय वस्तु नाना साहब की पुत्री मैना के इर्द गिर्द रहती है। यह घटना उस समय की है जब 1857 में भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता के साथ उनका दमन किया। अंग्रेजों की क्रूरता और निर्दयता का वर्णन इस पाठ में किया गया है। बच्चों, इस पाठ को दो अनुवृत्तियों में पढ़ेंगे। पहली अनुवृत्ति पृष्ठ संख्या 51 पर पाठ के शुरू से ही सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधू पंत नाना साहब यहां से लेकर और फिर पृष्ठ 52 पर मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा यहां तक इस अनुवृत्ति में पढ़ेंगे। अब पाठ शुरू करते हैं। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया। बच्चों, अंग्रेजों की निर्दयता को पाठ के शीर्षक से ही बता दिया है कि 1857 में भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया था, तो आंदोलन करने वालों में व अंग्रेजों की प्रति विद्रोह करने वालों में नाना साहब धुंधुपंत भी थे। जब अंग्रेज सैनिक नाना साहब को पकड़ नहीं सके, उन्हें बंदी नहीं बना सके, तो उन्होंने नाना साहब की पुत्री मैना को उसी के महल में, नाना साहब के महल में जलाकर भस्म कर दिया था। भस्म का अर्थ राख से है, अर्थात मैना को जलाकर राख कर दिया। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे, तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। लेखिका ने इसमें उस घटना का वर्णन किया है जब 1857 में नाना साहब धुंधुपंत ने अपने साथियों के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों पर हमला किया। नाना साहब एक क्रांतिकारी नेता थे। जब नाना साहब ने अंग्रेजों पर हमला किया, तो कुछ अंग्रेज नर नारी मारे गए। इससे अंग्रेज नाना साहब से बहुत खफा हो गए और उन्हें घेरकर बंदी बनाने की कोशिश करने लगे। नाना साहब की योजना वहां असफल हो गई थी। अंग्रेजों ने भारतीयों को बहुत क्षति पहुंचाई। अंग्रेजों पर हमला करने वालों में से कुछ पकड़े भी गए, पर नाना साहब वहां से भागने में सफल हो गए। अंग्रेजों से बचने के लिए वे वहां से निकल गए थे और बिठूर पहुंच गए थे। जब बिठूर पहुंच गए थे, अंग्रेजों का सैनिक दल वहां भी गया, तो वहां से जब वो भागे, जल्दी में भागने के कारण अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। अंग्रेज सिपाहियों से बचकर जब नाना साहब निकल गए, तो अंग्रेज सिपाही बिठूर की ओर रवाना हो गए। नाना साहब बिठूर के रहने वाले थे, वहां उनका अपना महल था और उसी महल में नाना साहब की पुत्री बालिका मैना रहती थी। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। तो अंग्रेजों ने भारतीयों द्वारा किए विद्रोह को दबा दिया और फिर नाना साहब को पकड़ने के लिए जब बिठूर पहुंचे, तो नाना साहब वहां भी नहीं मिले। अंग्रेज सैनिकों के बिठूर पहुंचने से पहले ही नाना साहब धुंधुपंत वहां से भाग गए, पर जल्दी में भागने के कारण अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। वहां अंग्रेज सैनिकों ने मैना को बंदी बना लिया। मैना भी बहुत निडर, आत्मविश्वासी और अपने देश के लिए मर मिटने वाली बालिका थी। उस निरीह, निरीह का अर्थ है बेचारी, भोली भाली, और निरपराध का अर्थ है जिसने अपराध न किया हो। तो अंग्रेज सैनिकों ने उस निरीह और निरपराध बालिका को अग्नि में भस्म कर दिया, अर्थात उसे जला दिया, कह सकते हैं जलाकर राख कर दिया। जिस क्रूरता के साथ मैना को जलाकर भस्म किया, उसके बारे में जानकर पाषाण हृदय, पाषाण हृदय का अर्थ है कठोर हृदय, पत्थर हृदय, आशय यह है कि कठोर हृदय वाले लोग भी उस दर्दनाक घटना के बारे में जानकर द्रवीभूत हो जाते हैं। इस पाठ में इसी घटना का वर्णन किया गया है। अब आगे, कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। तो नाना साहब ने अपने साथियों के साथ कानपुर में जो विद्रोह किया तो अंग्रेज सैनिकों ने उसका दमन किया जिसमें बहुत से अंग्रेज नरनारी मारी गई थी। नाना साहब धुंधुपन वहां से भाग गए थे। उसके बाद अंग्रेज सैनिक दल नाना साहब को पकड़ने के लिए बिठूर पहुंचा पर नाना साहब धुंधुपंत वहां नहीं मिले। अंग्रेज सैनिकों ने उनका महल लूट लिया पर उन्हें उस महल में थोड़ी सी ही संपत्ति मिली थी, बहुत ज्यादा धन वहां नहीं मिला, उन्हें वहां अधिक सामान नहीं मिला पर जो सामान मिला उसे ले लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। तो अंग्रेजों ने निश्चय किया कि इस महल को तोप के गोलों से उड़ाकर नष्ट कर दिया जाए। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदरी बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई नहीं दी थी। आशय यह है कि सैनिकों ने महल को तोपों से उड़ाने के लिए तोपें लगाईं। उस समय महल के बरामदे में एक बहुत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। यह बालिका कौन थी? यह बालिका नाना साहब धुंधुपंत की पुत्री मैना थी। उस बालिका को वहां अचानक प्रकट देखकर अंग्रेज सेनापति को बहुत आश्चर्य हुआ। अब ये अंग्रेज सेनापति कौन था, इसका नाम क्या था? ये अंग्रेज सेनापति का नाम था सर टॉमस हे। और उसे आश्चर्य इसीलिए हुआ क्योंकि जब उन्होंने महल लूटा था तो उस महल में कोई नहीं था, फिर यह बालिका कहां से आ गई? बच्चों, जो राजा होते थे वे अपने महल में तहखाना, एक गुप्त स्थान जो दूसरों को पता न हो, बनवाते थे जिससे संकट के समय वहां पर जाकर के छिप जाएं और अपनी जान बचा सकें। तो बालिका मैना भी उस महल के किसी तहखाने में छिप गई होगी, पर जैसे ही महल को उड़ाने की तैयारी हुई कि वह बालिका महल को बचाने के लिए वहां आ गई और उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। मैना ने बड़े भोलेपन से अंग्रेज सेनापति से कहा कि आप इस मकान को न गिराएं, इसे नष्ट न करें। मैना उस मकान में रहती थी, वहां उसका बचपन बीता था, वह मकान उसे बहुत प्रिय था, इसीलिए वह उस मकान को बचाना चाहती थी। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस का मतलब कम उम्र, छोटी उम्र, अर्थात उस बालिका की करुणा से भरे मुख और उसकी छोटी सी उम्र को देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आ गई। कहने का भाव है कि छोटी सी उम्र वाली मैना ने करुण स्वर में मकान न गिराने को कहा तो सेनापति को भी उस पर दया आ गई। सेनापति ने पूछा कि क्या चाहती हो, तो बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे, अर्थात क्या आप इस महल को नष्ट नहीं करेंगे, इस महल को छोड़ देंगे? तब सेनापति ने कहा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है, तुम इस मकान को क्यों बचाना चाहती हो, इसकी रक्षा क्यों करना चाहती हो? यह सुनकर बालिका मैना ने सेनापति हे से पूछा, कि इस मकान को गिराने में आपका क्या उद्देश्य है, आप इस मकान को क्यों गिराना चाहते हैं। तो सेनापति ने कहा, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। वास स्थान से मतलब रहने का स्थान, नाना साहब का वह महल। यह नाना साहब धुंधू पंत का महल है और सरकार ने इसे विध्वंस करने की आज्ञा दी है। विध्वंस करना, नष्ट करना, विनाश करना, समाप्त करना। सेनापति ने कहा कि अंग्रेज सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने वाले विद्रोही नेता धुंधू पंत नाना साहब का मकान है यह। अंग्रेज सरकार का उन पर बहुत क्रोध है, वह नाना साहब से संबंधित हर चीज नष्ट कर देना चाहती है। सरकार की आज्ञा से ही इसे नष्ट किया जा रहा है। तब बालिका मैना ने सेनापति हे को तर्क देते हुए कहा, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मैना ने कहा, जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए हैं वो लोग दोषी हैं, जिन्होंने उन पर हमला किया वो दोषी हैं, तो जिनका दोष है उन्हें सजा दीजिए। यह मकान तो जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ मतलब निर्जीव है, इसने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह मकान मुझे बहुत प्रिय है, मैं यहां रहती हूं, इसी से मैं प्रार्थना करती हूं कि इस मकान की रक्षा कीजिए। इस मकान को तोप के गोलों से उड़ाकर नष्ट मत कीजिए। बालिका मैना की बातें सुनकर सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना होगा। अर्थात सेनापति ने कहा कि मैं कर्तव्य पालन के कारण बेवश हूं, लाचार हूं, मजबूर हूं, मुझे सरकार ने आज्ञा दी है, इसीलिए मुझे यह मकान गिराना ही होगा। मैना ने उस मकान को बचाने की बहुत कोशिश की, पर अंग्रेज कहां मानने वाले थे। फिर मैना ने मकान को बचाने की आखिरी कोशिश की। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं जानती हूं कि आप जनरल ही हैं, आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था, मेरी सर टॉमस ही की बेटी का नाम था। कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। मैना ने सेनापति हे से कहा कि शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, पर मैं आपको पहचानती हूं, आप जनरल हे हैं, आपकी बेटी मेरी और मैं दोस्त थीं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं। कई वर्ष पहले आपकी बेटी मेरी मेरे पास आती रहती थी, हम दोनों अच्छी सहेली थीं। उसने सेनापति को यह भी याद दिलाया कि उस समय आप भी हमारे यहां आते थे और मुझे अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। मैं ना किसी भी तरह हे को मनाना चाहती थी, तो उसने जब अपना इस तरह परिचय दिया तो जनरल हे को वह सब याद आ गया। मैना के प्रति उनके हृदय में करुणा जाग गई, उन्होंने पहचान लिया और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। जिस तरह मैना ने सेनापति हे के सामने अपनी और अपनी दोस्ती की बात रखी और कहा कि मेरी की मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ था। मेरी की एक चिट्ठी अभी भी मेरे पास है। तो सेनापति ने मैना को पहचान लिया और उसके प्रति दया के भाव आ गए। पर अंग्रेज सरकार की आज्ञा और कर्तव्य पथ ने उन्हें लाचार कर दिया। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हां मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। सहचरी मतलब सहेली हो। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूं उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। कहने का भाव यह है कि मैना को पहचानने के बाद जनरल हे उसकी सहायता तो करना चाहते थे, पर सरकारी नौकर होने के कारण वे नाना साहब के मकान को गिराने की सरकार ने जो आज्ञा दी थी उसे टाल भी तो नहीं सकते थे। अर्थात उन्हें मकान गिराना ही था। वे असमंजस में थे कि क्या करें। फिर भी उन्होंने मैना को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। अर्थात उन्होंने कहा होगा कि मैं बड़े अधिकारियों से बात करूंगा तथा इस मकान की और तुम्हारी रक्षा करने की, तुम दोनों को बचाने की कोशिश करूंगा। इस तरह उन्होंने मैना को आश्वासन दिया। बच्चों इस भाग में इतना ही। पाठ का शेष अंश अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।